Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और असवन बुद्धि हो तो द्वेषात्मक संस्कार पैदा करेगी। ये जो रागात्मक संस्कार हो रहा है, द्वेषात्मक संस्कार हो रहा है, ये संस्कार स्मरण कराएगा। इंद्रियों को रोकने पर भी मन अपना मनोराज्य करेगा। आप भजन करके बैठ गए, अब कभी मान लो कि आपको 10 साल पहले कोई गाली दिया हो, उसका संस्कार आ जाएगा। अब भजन करने के लिए बैठ गए और याद आ गई, देखो हमने मैंने कुछ कहा नहीं था और ऐसे ही हमको गाली दे दिया। अब भजन करते समय भी आप क्रोधित हो जाएंगे, कभी कभी देखो ये बड़बड़ाना भी लगता है, मुख से वाणी भी निकल जाएगी। तो ये जो भावना आपको बताई मंत्र रूप से, इसका प्रयोग सर्वत्र करना चाहिए। जैसे गुरु मंत्र देता है, अभी मंत्र केवल कि सुबह 5 मिनट जप लेना और शाम को 5 मिनट जप, इसीलिए नहीं है मंत्र। मंत्र का प्रयोग तो 24 घंटे करने के लिए है। ये माला तो देते हैं, ये तो केवल अभ्यास के लिए है। धीरे धीरे ये 24 घंटा मंत्र का जप हो जावे, भाई तुम ये मंत्र ले लो, 24 घंटा इसका प्रयोग करो, तब तो ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा संसार से। इसी प्रकार ये सब खाने की चीज है। मान लो भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, कोई भी नाम हो, मान लीजिए कोई मधुर स्वर वाला व्यक्ति ने कहा राम का नाम, और कर्कश स्वर वाला कोई राम का नाम है, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो मधुर स्वर से उच्चरित राम और कर्कश स्वर से उच्चरित राम में कोई अंतर नहीं है, ना भगवान का राम में नाम में अंतर है, ना नामी में अंतर है, दोनों में अंतर नहीं है। यदि कोई अंतर समझता हो, समझना चाहिए कि भक्ति की कमी है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। ऐसा जी मैंने, जैसे रामायण की कथा हो, कथा करने वाला कैसा भी हो, तो सबकी कथा में हनुमान जी महाराज आते कि नहीं? भेदभाव नहीं करते, इसको कथा करना नहीं आता है और इसको कथा करना आता है। इसी प्रकार भजन कोई भी गाता हो, सभी में भगवान का भजन सुन करके आपका हृदय यदि गदगद नहीं होता हो, कोई भी हो, समझना चाहिए कि हम भक्त नहीं है भगवान के, है ना? वेदांत का वेदांत की चर्चा कहीं भी होती हो, अपने बड़े महाराज जी थे साधना सदन में, तो वेदांत का पाठ कोई भी चलाता हो, चाहे बड़ा विद्वान हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, सबके पाठ में आकर बैठते थे। कोई मान लीजिए थोड़ी सी गलती हो गई, बोलते थे, मैं बोलते थे जरूर, लेकिन ये भेदभाव नहीं करते भाई इसको वेदांत का पाठ पढ़ाना आता है इसको नहीं आता, ऐसा नहीं। वेदांत ही वेदांत ही है ना। इसी प्रकार सभी शब्द में, चाहे आपकी कोई स्तुति करता हो चाहे आपकी कोई निंदा करता हो, तो स्तुति परक शब्द निंदा परक शब्द में कोई अंतर नहीं है। शब्द तो शब्द है, तो कंठ तालु अभिघात के भेद से शब्द अलग अलग हो जाता है, है ना? शब्द तो एक ही है, एक ही शब्द शंख से निकलता तो शब्द अलग हो जाता है, मालूम पड़ता है। मृदंग से निकला तो शब्द अलग मालूम पड़ता है, लेकिन दोनों में शब्द का कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार यदि आपने भावना किया, चाहे स्तुति परक शब्द हो चाहे निंदा परक शब्द, शब्द तो शब्द ही है, इस प्रकार यदि भावना करेंगे तो विक्षेप नहीं होगा। देखो न स्तुति परक शब्द में श्रवण बुद्धि होगी, न निंदा परक शब्द में अश्रवण बुद्धि, और स्तुति करने वाले व्यक्ति में ना राग होगा ना निंदा करने वाले व्यक्ति में द्वेष होगा। यदि ऐसी भावना आपने यदि नहीं किया तो रागात्मक संस्कार द्वेषात्मक संस्कार होकर के इंद्रियों को बंद करने पर भी जिससे में आप भजन करने के लिए बैठ जाएंगे वो संस्कार स्मरण करा देगा, भजन नहीं हो सकता है। तो इस भावना यदि किया हो तब तो मनोराज्य नहीं हो सकता है, है ना? तो भावना के साथ साथ संसार का कोई भी पदार्थ हमको वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं करा सकता है। इसलिए क्या करें, भावना के साथ साथ अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को आप तीव्र करिए तो मनोराज्य नहीं होगा। देखो मनोराज्य नहीं भी हुआ मान लो, कभी कभी झक्का लग जाएगा, निद्रा आ जाएगी, आएगी कि नहीं? विचार किए थे मांडुक्य में, मन जरूर किसी ना किसी को आलंबन करता है, मन आलंबन किए बिना नहीं रह सकता है, चाहे बाह्य पदार्थ हो चाहे आभ्यंतर पदार्थ हो मनोराज्य, चाहे निद्रा हो, तीन हो गए, देखो तीन हो गए ना। बाहर दशा में मन बाहर चला जाता है और आंख बंद कर दिया तो मन में जो फोटो है ना वो फोटो को निकालता रहेगा। वो तो संस्कार से संस्कृत मन के द्वारा स्मरण होता रहेगा मनोराज्य, हो गए ना, दो हो गए। और यदि अमृतत्व की इच्छा तीव्र नहीं है, है ना, वैराग्य के द्वारा आपने तो भाई संसार के प्रति मन को रोक दिया भावना के द्वारा, हो गया ना, लेकिन अमृतत्व की इच्छा यदि तीव्र ना हो तो मन निद्रा में जा सकता है। आप देखते हैं, देखो वेदांत में रुचि यदि नहीं हो ना, आपका शरीर भी स्वस्थ है, अनुभव करके देखिए, शरीर भी स्वस्थ है, निद्रा भी पूरी हो रही है, ठीक से आपने सोया भी है घर में रात में, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, जब पुस्तक खोलेंगे तो नींद आ जाती है, इसका क्या हेतु है? इच्छा नहीं है, वेदांत के प्रति श्रवण के प्रति इच्छा नहीं है। इसी प्रकार से इंद्रियों को रोकने पर भी, मनोराज्य न होने पर भी यदि भजन में यदि रुचि ना हो तो मन कहाँ जाएगा, निद्रा में जाएगा कि नहीं? देखो है ना, इस अमृतत्व की यदि तीव्र इच्छा हो, है ना, मनोराज्य भी नहीं होगा, निद्रा में भी मन नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा? तीनों तब रोक दिया ना, फिर चार रास्ता है मान लीजिए, है तीनों रास्ता को रोक दिया और कहाँ जाएगा मन? अपने घर में ही जाएगा। इसलिए हट पूर्वक मन को आप रोक नहीं सकते, है ना, युक्ति से के युक्ति से, है ना, इसलिए उपाय निगृहयात विक्षिप्तम काम भवयो, मांडुक में कहते हैं कि उपाय के द्वारा तरकीब के द्वारा मन को आप संयमित कर सकते हैं। तीन मार्ग को यदि आपने रोक दिया तो एक ही मार्ग शेष रह गया, कौन है? अपना घर, परमात्मा। परमात्मा को ही जरूर मन विषय करेगा, और कहाँ जाएगा वो? मन कभी भी निरालंबन नहीं होता है, जरूर किसी ना किसी को आलंबन करेगा, इसलिए परमात्मा को ही आलंबन करेगा। इसलिए क्या करें कि अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को तीव्र करो। व्यवहार के समय ये भावना रखो कि संसार में कोई भी पदार्थ क्षणिक सुख को तो प्राप्त करा सकता है, लेकिन शाश्वत जो सुख है परमानंद, उसको प्राप्त नहीं करा सकता है। उपनिषद में कथा आती है ना, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे शरीर से, तो भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को गुरु बना करके ज्ञान को प्राप्त किया, वैदिक ज्ञान को। और जब संन्यास लेने का समय आया, उनकी दो पत्नियां थी मैत्रेयी कात्यायनी, दो पत्नियों को बुलाया। पत्नी की भी आज्ञा लेनी चाहिए संन्यास के लिए, ये नियम होता है। हाँ, नियम है, बिना आज्ञा से पति नहीं जा सकता है, भाई अर्धांगिनी है, है ना? पत्नी क्या है? अर्धांगिनी। तो विवाहिता जो अपनी स्त्री है उसको पत्नी कहते हैं। पत्नी क्यों कहते हैं? यज्ञ संबंधी होने से पत्नी, पत्रनो यज्ञ संबंधी, ये सूत्र होता है, पाणिनि सूत्र। जो पति के साथ यज्ञ में जो सहभागी है उसी का नाम पत्नी है। तो जाग करते हैं किसको ज्यादा फल मिलेगा जी? पति को ज्यादा मिलेगा कि पत्नी को? दोनों को समान है ना। भले ही पत्नी पूजा करे पति की, है ना, लेकिन फल दोनों को समान मिलता है, है ना। इसलिए पत्रनो यज्ञ संयोगे, पति के साथ यज्ञ का संबंधी होने के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को पत्नी कहते हैं, है ना। इसलिए पत्नी की आज्ञा लेनी चाहिए। तो इसलिए दोनों को बुलाया, देखो हम संन्यास लेने जा रहे हैं। उनके पास बहुत संपत्ति थी जागीरमल्लिक के साथ पास। दोनों को बुलाया, देखो आगे क्या होगा पता नहीं, है ना। संपत्ति विपत्ति का मूल है, संपत्ति बहुत हो तो झगड़ा स्वाभाविक है, प्रायश झगड़ा होती है। जब दोनों को बुला लिया, मैत्रेय कात्यायन को, कात्यायन को एक भाग दे दिया। कात्यायन ने कुछ नहीं कहा, वे ठीक है जो हो रहा है ठीक है। लेकिन मैत्रेयी बड़ी विदुषी थी, है ना, ऐसा बोलते हैं महात्मा लोग। तो सबसे पहले मैत्रेयी थी, उनकी बड़ी पत्नी है, बड़ी पत्नी है वो, तो शास्त्रार्थ में साथ साथ जाती थी, इसलिए विदुषी थी वो भी। लेकिन बाकी कार्य करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए बहुत आग्रह किया मैत्रेयी ने, भाई आपकी सेवा करने वाली कोई है ही नहीं। बहुत अब आग्रह किया, फिर दूसरी पत्नी से विवाह किया, तो उसका नाम है कात्यायन। तो कात्यायन तो भाई आश्रम की व्यवस्था देखती थी, है ना, व्यवस्था संभालती थी, व्यवस्थापिका थी वो, इसलिए शास्त्र में ज्यादा रुचि नहीं थी उनकी, है ना। तो व्यवस्था में जो पड़ जाता है ना ज्यादा, तो शास्त्र में रुचि कम हो जाती है, है ना। तो ऐसा है, तो कात्यायन ने कुछ नहीं कहा, तो मैत्रेय को दिए आधा भाग धन। मैत्रेय ने प्रश्न पूछा, भगवान एक प्रश्न पूछूं मैं? हाँ पूछो, आप तो चले जाएंगे, उसके बाद फिर किससे पूछूं मैं? भाई आप जो धन दे रहे हैं, ये धन से क्या मैं अमृतत्व को प्राप्त कर सकती हूं? ये आप निश्चय करके बताइए। तो धन से अमृतत्व को यदि खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं हम? याज्ञवल्क्य जी खड़े थे, बैठ गए, है ना, और वो चाहते थे भी ऐसा प्रश्न पूछे, है ना। गुरु चाहता है देखो हमेशा, जो शिष्य अच्छा अच्छा प्रश्न पूछे, आध्यात्मिक के विषय में प्रश्न पूछे, गुरु हमेशा चाहता है, है ना। तो याज्ञवल्क्य भी चाहते थे कि ऐसा प्रश्न पूछे जिससे कि मैं कुछ दे करके जाऊं, और जानते थे ये तो कात्यायन की कोई रुचि है ही नहीं इसमें, ये तो कोई पूछेगी नहीं। तो मैत्रेय ने जब पूछा कि धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त कर सकती हूं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा इसकी आशा मत करो तुम, अमृतत्वम तो नासास्ति वित्तेन। ये उत्तर दिया भी, अमृतत्व की प्राप्ति तो बहुत दूर है, आशा भी नहीं करनी चाहिए, है ना। आशा करना भी मूर्खता है ना। तब मित्र ने कहा, फिर आप धम रखिए अपने पास, जिस धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती हूं, आप ऐसे धन को क्यों दे रहे हैं, है ना। ये नाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुरियम। जिस धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती हूं, आप ऐसा धन को क्यों दे रहे हैं। आप ऐसा धन दीजिए कि जिस धन से वास्तविक अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। तब उन्होंने उपदेश किया मैत्री ब्राह्मण में, बृहदारण्यक में। इस बार यहां पर भी देखिए, नचिकेता को कितना प्रलोभन दिया बताओ, है धन संपत्ति राज्य सब कुछ, फिर भी नचिकेता ने कहा ये सब अपने पास रखिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास रहे तो शोभा आएगी, हमारे पास कोई शोभा नहीं आएगी, है ना। तो ये जितने भी आप धन संपत्ति दे रहे हैं, ये धन संपत्ति क्या करेगी, है ना, ये अपनी अपनी इंद्रियां को ये जीर्ण करेगी, है ना, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये अनुभूत है। इसी प्रकार व्यवहार के समय यदि ऐसी भावना करेंगे, ये तो सारे की सारी संपत्तियां ये केवल साधन है, साधन साधन बस, शरीर निर्वाह के लिए परमात्मा का भजन के लिए साधन मात्र, ये सब कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, ये मूर्खता है ना। इसलिए आपको पहले से बता दिया, अंदर का ज्ञान यदि गलत है तो बाहर का पदार्थ विक्षेप का हेतु होता है, अधीरता का हेतु होता है, विक्षेप करेगा। और बाहर का, ये अंदर का ज्ञान यदि सही है ना, ये सारा का सारा ये साधन है, साध्य नहीं है। हमको तो अमृतत्व को प्राप्ति चाहिए, बाहर पदार्थ की प्राप्ति नहीं चाहिए। ऐसी अमृतत्व की तीव्र इच्छा हो, मनोराज्य भी नहीं होगा भजन करते समय, ना मन निद्रा में जाएगा। इसलिए तो व्यवहार की अवस्था में, बाह्य अवस्था में, तो अनुकूलता को भी देखिए, प्रतिकूलता को भी देखिए, दोनों को देखना है, किसी का एक पक्ष नहीं लेना है। देखो ये जो अंदर की यात्रा है ना, ये परमात्मा का दर्शन के लिए अंदर की यात्रा चल रही है। अंदर की यात्रा में अच्छी अच्छी अनुकूल परिस्थितियां आएगी, ये देवता लोग देने वाले हैं सब देवता लोग। तो हिमालय में आप जाएंगे, पहाड़ के ऊपर जाएंगे, घाटी को यदि पार करना हो तो घाटी में बढ़िया बढ़िया दृश्य आता है, नाम सुने फूलों की घाटी है ना। हाँ, ऐसी घाटी बहुत है वहां पर हिमालय में। आपको घाटी पार करना है तो घाटी पार करते समय तो कभी कभी मन करता है थोड़ा बैठ जाओ यहां पर, देख लो थोड़ा सा, और बैठ गए वहां पर थोड़ा सा, तो उसमें छोटे छोटे फूल होते हैं, पुष्प होते हैं घाटी में, है ना। और पुष्प की जो सुगंधी है ना, सुगंधी नशीली होती है हाँ। और थोड़ा सा बैठ करके विश्राम किए तो ऐसी नशा चढ़ेगी, तो विश्राम ही करते रहेंगे आप। और एक बार लेट गए तो रात में लेटते ही रह जाएंगे आप, बर्फ पड़ जाएगी, सुबह राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना भाई। हाँ, ये भी तो घाटी और क्या है, ये अंदर की यात्रा के समय बड़ी बड़ी घाटी आएगी, इसमें अच्छे अच्छे पुष्प आएंगे, ये मान पद प्रतिष्ठा, ये सम्मान स्तुति, ये सब आएगी। देखो प्रतिकूल भी आएगी, ये भी आएगी। आप पद प्रतिष्ठा मिल गई, स्तुति कर कोई, है ना, और यही सब कुछ है जीवन का, ऐसा मान गए तब तो इसी में ही रह जाएंगे बस, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाहर जो है व्यवहार काल में आपको धीर बनकर रहना होगा और भजन के समय साधन के समय अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को आप तीव्र करिए, तब क्या होगा? कहते हैं कि प्रत्येक आत्मानम इच्छत, प्रत्येक आत्मा का दर्शन हो जाएगा, है ना। मन में एकाग्रता भी आएगी, मन में जो है सूक्ष्मता भी आएगी और ज्ञान की योग्यता आएगी। ऐसी ज्ञान की योग्यता के बिना यदि श्रवण करते वेदांत का, तो परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान तो हो सकता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है, है ना। तो ये यहां पर प्रतिबंधक को बता दिया, प्रतिबंधक है बहिर्मुखता, और बहिर्मुखता होने को, बहिर्मुखता को दूर करने के लिए तीन साधन बता दिया। एक तो धीर होना होगा, और दूसरा आवृत चक्षु, और तीसरा है अमृतत्व इच्छा, अमृतत्व प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो। अच्छा, तो ये जो दृष्टा है, दृष्टा का स्वरूप यह प्रत्येक आत्मा है, तो इस आत्मा के बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए। भाई दृष्टा को आत्मा क्यों कहते हैं? भाई आत्मा के स्वरूप की पहचान करानी है, फिर इसको आत्मा क्यों कहा जाता है दृष्टा को, साक्षी को? तो भगवान भाष्यकार यहां पर लिखते हैं, यच्चाप्नोति यत आदत्ते यच्चाप्ति विषयान यह यच्चास्य संततो भावस तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। ये देखो भाष्य में है, ये भगवान भाष्यकार लिखे हैं, कहते हैं जो सारा संसार को व्याप्त करके रखा है ना। तो एक चलचित्र के पर्दे में चित्र कैसे भी हो, सभी चित्र को पर्दा जैसे व्याप्त करके रखता है, हो गया ना। इसी प्रकार से आत्मरूपी जो पर्दा है, ये जागरण स्वप्न सुसुप्ति में होने वाले जितने भी चित्र है सबको व्याप्त करके रखा है, इसलिए आपनोति आत्मा, ये पहला अर्थ हो गया। आप ले व्याप्त हो तो सबको व्याप्त करे, इसका नाम क्या है? आत्मा। कोई बोलेगा माया भी तो व्याप्त करके रखा है संसार को, तो जो व्याप्त करता है उसी का नाम आत्मा, तो माया का भी आत्मा कहो भाई। ठीक है, संसार को माया व्याप्त करके रखा है, फिर भी ब्रह्म को व्याप्त कर सकती है ना? नहीं, माया को लेकर के आत्मा जीवात्मा है, हो गया कि नहीं? लेकिन आत्मा को व्याप्त नहीं कर सकती माया, परिछिन्न पदार्थ अपरिछिन्न को व्याप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा तो व्यापक है, अपरिछिन्न है, कण कण में व्याप्त है। संसार में माया व्याप्त होने पर भी परमात्मा में माया व्याप्त नहीं है, हो गया ना। इसलिए परमात्मा सबको व्याप्त करके रखा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? आत्मा। आपनो अतिथि आत्मा, है ना। तो उत्पन्न कर दिया और स्थिति काल में सबको व्याप्त करता है, ये हो गया परमात्मा भी, है। और जब संहार का समय आ जाता है अपने में समझ लेता है। इसलिए दूसरा अर्थ किए भगवान भाष्यकार, आदत्ते इति आत्मा। ये देखो, सबको संहार काल में जो अपने में समट लेता है, ये ना जाता न जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिषम विषन्ति, परमात्मा में लय है। तो संहार काल में जो लय कर लिया, स्थिति काल में जो सबको व्याप्त किया, दो अर्थ हो गए ना भी। स्थिति काल में प्रकाशित भी जो करता है सबको, उसी को भी आत्मा कहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, जो सत्ता दे रहा है वो अलग है, सत्ता देने वाला अलग है और प्रकाश देने वाला अलग है, ऐसा नहीं है, समझ में ना। सर्प को जो ही सत्ता देता है, सर्प को प्रकाशित भी वही करता है, हो गया ना। विचार कर लो भाई, सर्पों को सत्ता रसी देती है कि आत्मा देती है, कौन देती है? है तो फिर सत्ता देने वाला फिर अलग हो गया और प्रकाशित करने वाला अलग हो गया, ऐसा नहीं है, है ना? इसका विचार करेंगे, जो ही सत्ता रस्सी को देता है, जो ही आत्मा रस्सी को सत्ता देता है, वही आत्मा सर्पों को भी देता है। ऐसा जो मैं पहले आपको बता दिया, जो ही पर्दा वृक्ष को सत्ता देता है, वही पर्दा वृक्ष में रहने वाला पत्ते को भी देता है, हो गया कि नहीं? जो ही आत्मा स्वप्न का अधिष्ठान है, वही आत्मा जागृत का भी अधिष्ठान है, हो गया? तो एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है और एक ही चेतन है वेदांत में, है ना? तो जिसने सत्ता दिया स्थिति काल में, स्थिति काल में वही प्रकाशित भी करता है। इसलिए तीसरा अर्थ यहां पर करते हैं कि यच्च अति विषयान यह, स्थिति काल में समस्त पदार्थ को जो अति मतलब प्रकाशित करता है, देखता है, रूप को भी देखता है, रस को देखता है, और यदि मिल गए तब तो विक्षेप हो गया, किसके साथ? मन बुद्धि के साथ। मन बुद्धि के साथ मिल गए तो रूप का संस्कार आएगा, अनुकूल रूप यदि हो तो सवन बुद्धि हो जाएगी, प्रतिकूल यदि रूप हो और सवन बुद्धि हो, वही मनोराज्य फिर करा लेगा। देखो भगवान का भजन नहीं हो सकता उससे, ये तीसरा अर्थ हो गया। अब तो समय हो गया तो आगे का विचार कल करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।